रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल कल भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर जाएंगे भारत की यात्रा पर। नापी विभाग द्वारा भूमि संबंधी सेवाएं घर बैठे प्राप्त की जा सकें, इसके लिए मेरो किता ऐप किया गया सार्वजनिक। तराई के जिलों में अगले कुछ दिनों तक गर्म और लू चलने की संभावना को देखते हुए जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने सतर्क रहने का किया आग्रह। और हिजबुल्ला ने इसराइल और लेबनान के बीच हुए नए सीजफायर समझौते को मानने से किया इनकार। अब समाचार विस्तार से। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर कल से 24 गते 8 जून तक भारत की औपचारिक यात्रा पर जाएंगे। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान परराष्ट्र मंत्री खनाल अपने भारतीय समकक्ष डॉ जयशंकर के साथ औपचारिक वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, संपर्क सुविधा, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग तथा लोगों के बीच संबंधों हित के विषय में विभिन्न विषयों पर चर्चा परिचर्चा होंगी। परराष्ट्र मंत्री खनाल के 24 गते 8 जून को काठमांडू लौटने का कार्यक्रम है। नापी विभाग ने मेरो किता मोबाइल ऐप सार्वजनिक किया है। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल की उपस्थिति में आज लॉन्च किए गए इस ऐप के माध्यम से नागरिक घर बैठे भूमि संबंधी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। नापी विभाग के अनुसार ऐप के जरिए नक्शा प्रिंट, फील्ड बुक की प्रति, प्लॉट रजिस्टर की प्रति तथा फील्ड सर्वेक्षण रेखांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन दर्ज होने के बाद प्रणाली द्वारा ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी सहायता से सेवाग्राही अपने आवेदन की स्थिति नियमित रूप से देख सकेंगे। विभाग ने बताया कि ऐप में ई सेवा, खलती और कनेक्ट आईपीएस के माध्यम से राजस्व भुगतान करने की सुविधा भी शामिल की गई है। मेरो किता सेवा मोबाइल ऐप के साथ साथ वेब संस्करण में भी उपलब्ध है। इस अवसर पर मंत्री रावल ने डिजिटल सुशासन को मजबूत बनाने के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का और विस्तार करने का प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा कि संविधान में दलित समुदाय को दिए गए अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संघीय संसद प्रतिबद्ध है। जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दलित आयोग द्वारा आज ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख अर्याल ने कहा कि जातीय भेदभाव और छुआछूत का अंत केवल सरकार या किसी एक निकाय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह राज्य, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, संचार क्षेत्र, शैक्षिक संस्थानों और समस्त नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। सभामुख अर्याल ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, धार्मिक स्थलों तथा रोजगार के क्षेत्रों में छुआछूत की घटनाएं अब भी मौजूद है। कार्यक्रम में महिला, बाल बालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक और सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता बादी ने कहा कि छुआछूत और भेदभाव एक उन्नत समाज के निर्माण में बाधक है। रोलपा जिले की माड़ी गांव पालिका दो घर ती गांव के ब्यांगखोला स्थित शहीद मार्ग पर एक बोलेरो जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में जीप चालक दांग के घोराही उप महानगर पालिका 7 देसाही निवासी लगभग 25 वर्षीय वीर बहादुर चौधरी, दंगी शरण गांव पालिका 7 श्रीगांव के मूल निवासी तथा वर्तमान में घोराही उप महानगर पालिका 14 में रहने वाले लगभग 40 वर्षीय जीवधन चौधरी तथा उनकी पत्नी लगभग 38 वर्षीय कमला चौधरी शामिल है। यह जानकारी रोलपा के घरती गांव स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय ने दी है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई आपदा संबंधी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई है। प्राधिकरण के मुताबिक रौतहट, बारा और कपिलवस्तु जिलों में सर्पदंश से 3 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि रोलपा में रातामाटा क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ में बह जाने से 2 लोगों की जाने गई है। नेपाल मेडिकल काउंसिल द्वारा आयोजित चिकित्सक पंजीकरण प्रमाण पत्र लाइसेंस परीक्षा के नतीजा से स्वदेशी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी के शैक्षिक गुणस्तर अच्छा देखा गया है। इस वर्ष नेपाल मेडिकल काउंसिल एनएमसी द्वारा आयोजित लाइसेंस परीक्षा में 66.95% विद्यार्थी 76.79% सफल हुए हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने आज गर्म दिन तथा लू हीट वेव संबंधी एक विशेष बुलेटिन जारी करते हुए तराई के कुछ जिलों में सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने विशेष बुलेटिन जारी कर 14 जिलों में सतर्क रहने तथा अन्य 7 जिलों में अद्यावधिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखने का आग्रह किया है। जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार आगामी 3 दिनों तक कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी और सुदूर पश्चिम प्रदेश के तराई क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस या उनसे अधिक रहने की संभावना है। मौसमविद सरोजपुरा सैनी ने जानकारी दी कि आज भैरहवा में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि नेपालगंज में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। महाशाखा के अनुसार मधेस और लुम्बिनी प्रदेश के तराई क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर अगले 3 दिनों तक मध्यम स्तर की लू चलने की संभावना है। विभाग की सूचना में कहा गया है, कोसी, बागमती, गंडकी और सुदूर पश्चिम प्रदेश के तराई क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर अत्यधिक गर्म दिन रहने की संभावना है, इसलिए गर्मी से बचाव के उपाय अपनाएं। महाशाखा ने अत्यधिक बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी से विशेष सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है। विभाग ने बर्दिया, बांके, दांग, कपिलवस्तु, रूपंदेही, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम, परसा, बारा, रौतहट, सरलाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा और सप्तरी जिलों के नागरिकों से गर्म हवाएं चलने की संभावना के कारण विशेष सावधानी बरतने का आग्रह किया है। इसी प्रकार कंचनपुर, कैलाली, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व, चितवन, सुनसरी, मोरंग और झापा जिलों के नागरिकों से मौसम संबंधी सूचनाओं पर नियमित रूप से नजर रखने का अनुरोध किया गया है। विभाग ने बताया है कि गर्म हवा तथा लू के कारण थकान, कमजोरी, अत्यधिक प्यास लगना, सिरदर्द, पैरों में ऐठन, चक्कर आना, बेहोशी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती है, इसलिए इनसे बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाने का आग्रह किया गया है। मौसमविद बुरासैनी ने सलाह दी है कि अत्यधिक गर्मी के समय घर के भीतर या ठंडी जगह पर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकले, तेज धूप से बचे तथा हल्के और सूती कपड़े पहने। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि औद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमता, एआई और अल्गोरिदम द्वारा संचालित वर्तमान विश्व में भी साहित्य मानव सभ्यता और जीवन जगत को समझने का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। आज काठमांडू में आयोजित हिमालयन लिटरेचर फेस्टिवल एंड राइटर्स वर्कशॉप में उन्होंने कहा कि साहित्य समाज और मनुष्य को आत्मचिंतन तथा मानवीय संवेदनाओं से जोड़ता है। संचार मंत्री तिमल सिन्हा ने कहा कि विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था और औद्योगिकी में तीव्र परिवर्तन के बावजूद लोग आज भी अर्थ, सम्मान, पहचान और आशा की तलाश में है। प्रतिनिधि सभा की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति में आज राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक 2081 पर सैद्धांतिक चर्चा हुई। बैठक में सांसदों ने अपराध जांच को अधिक वैज्ञानिक और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सांसदों ने कहा कि आपराधिक घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए गठित होने वाली संस्था के कार्यकारी निर्देशक और संचालन समिति के सदस्यों के लिए विशेष विशेषज्ञता आधारित योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए तथा दक्ष जनशक्ति को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने वाली कंचनपुर की 15 सड़क परियोजनाओं के ठेके रद्द किए गए हैं। पूर्वाधार विकास कार्यालय ने बताया कि निर्माण व्यवसायियों को कार्यालय के साथ हुए समझौते के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करना था। अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद भी काम पूरा नहीं होने पर 15 परियोजनाओं के ठेके रद्द कर दिए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला ने इसराइल और लेबनान के बीच अमेरिका समर्थित युद्ध विराम समझौते की शर्तों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। संगठन के नेता नईम कासिम ने एक बयान में कहा कि इस समझौते पर हुई बातचीत बेकार और लेबनान के लिए अपमानजनक थी। उन्होंने दावा किया कि लेबनान के बड़े हिस्से के लोग भी इस समझौते को स्वीकार नहीं करते। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब इसराइल और लेबनान ने अपने नाजुक युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इस युद्ध विराम के तहत लेबनान के भीतर कुछ पायलट सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां हिजबुल्लाह के लड़कों की मौजूदगी पर प्रतिबंध होगा। बुधवार को जारी संयुक्त बयान में अमेरिका, इसराइल और लेबनान ने कहा कि यह समझौता तभी लागू होगा जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से गोलाबारी बंद कर देगा। लेकिन गुरुवार को हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने जवाब देते हुए कहा कि इस युद्ध विराम के तहत हिजबुल्लाह को गोलाबारी रोकनी होगी और इसराइल की सीमा के पास दक्षिणी क्षेत्र से अपने लड़कों को हटाना होगा। दरअसल ये आत्मसमर्पण के बराबर है और इससे इसराइल के लक्ष्य पूरे होंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल कल भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर जाएंगे। भारत की यात्रा पर नापी विभाग द्वारा भूमि संबंधी सेवाएं घर बैठे प्राप्त की जा सके, इसके लिए मेरो किता ऐप किया गया सार्वजनिक। तराई के जिलों में अगले कुछ दिनों तक गर्म और लू चलने की संभावना को देखते हुए जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने सतर्क रहने का किया आग्रह। और हिजबुल्लाह ने इसराइल और लेबनान के बीच हुए सीज फायर समझौते को मानने से किया इनकार। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।